Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Mabalabhajara Shakti Padayosti Naraktihi न च विषय विरक्तिः ध्यान योगेन शक्तिः इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्ते रुचिरवचन पुष्पैः अर्चनं सञ्चिनोमि वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने ॐ भद्रम् नो अपि वातयमन ॐ शान्तिः 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 श्री शंकर भगवत पाद विरचिता दशश्लोकी न भूमिर्न तोयम् न तेजो न वायुर्न खं नेन्द्रियम् वा न तेषाम् समूह अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्तेकसिद्ध तदेको वशिष्ठ शिव न वर्णा न वर्णाश्रमाचार धर्मा न मे धारणा ध्यान योगादय अनात्माश्रयाहं ममाध्यासाना तदेको न माता पिता वा न देवा न वेदा न यज्ञा न तीर्थम् सुषुप्तो निरस्ताति शून्यात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठ शिव न सांख्यम् न शैवम् न तत् पाञ्चरात्रम् न जैनम् मतम् वा विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मक तदेको वशिष्ठ शिवः केवलम् न चोर्ध्वम् न चाधो न चान्त न तिर्यङ् न पूर्वापराधिक् वियद्व्यापकत्वादखण्डैकरूप तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न शुक्लम् न कृष्णम् न रक्तम् न पीतम् न ह्रस्वम् न दीर्घम् अरूपम् तथा ज्योतिराकारकत्वात् तदेको वशिष्ठ शिव केवलोऽहम् न शास्ता न शास्त्रम् न शिष्यो न शिक्षा न तत्त्वम् न चायम् स्वरूपावबोधो विकल्पा सहिष्णो तदेको वशिष्ठ शिवः केव न जाग्रन्न मे स्वप्न को वा सुषुप्तिर् न विश्वो न तेजसः प्राज्ञको वा अविद्यात्मकत्वात् त्रयाणां तुरीयस्तदेको वशिष्ठ
शिवमेवलोहम्
अपि व्यापकत्वादितत्वा
प्रयोगात्
स्वतः सिद्धभावात् अनन्याश्रयत्वात् जगतु
समस्तम् तदन्यात् तदेको वशिष्ठः शिवः
केवलोऽहम् न चैकम् तदन्यत् द्वितीयम् कुतः स्यात् न वा केवलत्वम् न चाकेवलत्वम् न शून्यम् न चाशून्यमद्वैतत्वात् कथम् सर्ववेदान्
प्रसिद्धम् ब्रवीमि
कथम् सर्ववेदान् आज वैशाख शुक्ल पंचमी शुक्ल पक्ष है ना, शुक्ल पंचमी वैशाख के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। आज ही के दिन भगवान शंकर लोक शंकर बन करके अवतरित हुए, इसलिए ये शंकराचार्य जयंती, जिसके उपलक्ष्य में अभी आप लोगों ने बहुत ही सुंदर भजन समर्पित किया आचार्य जी को, और कथा के अंतिम में हम सब मिल करके साधन पंचक का भी पाठ करेंगे। ये साधन पंचक वही है जब आचार्य अंतिम स्थिति में थे उस समय अपने शिष्यों को और आगे आने वाले लोग किस साधना से जीवन में अपना कल्याण करें, इसके लिए उन्होंने ये उपदेश दिया है। पांच श्लोकों में साधन पंचक के श्लोक में गागर में सागर भर दिया। तो ऐसे तो उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, यमुना जी की ऊपर स्तुति है, यमुनाष्टक, गंगाष्टक, पांडुरंगाष्टक, ऐसे कौन से भगवती या भगवान ने जिनकी स्तुति आचार्य ने नहीं की हो। तो इतने सारे तो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि समय की अपनी सीमा है, मर्यादा है। कुछ भी एक भाव से उनको श्रद्धांजलि के रूप में हम सब पुष्प के रूप में अर्पित करेंगे। और इसे भी हम लोग रोज दस श्लोकी का पाठ तो कर ही रहे, और इस प्रेमपुरी सत्संग भवन में जितने भी आचार्य जी के ग्रंथ हैं, उनके टीका है, उसी के आधार पर यहां स्वाध्याय प्रवचन होता है। तो ऐसे तो बारह महीना हमेशा ही आचार्य जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन आज थोड़े विशेष दिन होने के कारण शंकराचार्य जयंती है। जितने भी आचार्य हुए, जिनका अवतार हुआ, थोड़े दिन पहले वल्लभाचार्य जी की जयंती थी, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, भगवान स्वामी नारायण, ये सब जो अवतरित हुए हैं, इनको याद करके हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आज आचार्य की कृपा नहीं होती, इतने उपनिषद आदि के ऊपर जो भाष्य किया तो रहस्य का पता नहीं चलता। आने वाले लोगों का कल्याण कैसे हो, इस बात को दृष्टि में रख करके आचार्य जी का बड़ा उपकार है, उन्हीं के प्रसाद आज हम सब पा रहे हैं। ऐसा अद्वैत ज्ञान का उपदेश दिया जिससे प्रत्येक मानव अपना कल्याण कर सके। आचार्य जी का कोई आग्रह नहीं था, कोई दुराग्रह नहीं था कि हमारी बात मानो, औरों की बात न मानी जाए, बल्कि एक ऐसा समय था जब देवता आदि के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शंकर ने उनको आश्वासन दिया कि मैं अवतार लूंगा। उस समय ऐसे नास्तिकता का वातावरण बन चुका था, ऐसे ऐसे धर्म आ गए थे जो मूर्ति पूजा करना, भगवान की पूजा करना, ये सब बोलते थे बेकार की बातें हैं, हमारी बात मानो, हमारे धर्म को मानो। लोगों में इस प्रकार से वैदिक धर्म के प्रति अनास्था पैदा करने वाले बहुत सारे लोग हो गए थे, जिसके लिए पुनः वैदिक मर्यादा स्थापित हो, वेद के अंदर मूल रूप से धर्म और मोक्ष का प्रतिपादन हुआ है, उसी मोक्ष और धर्म के बारे में बताने के लिए लोक में जैसे भगवान कृष्ण राम आदि अवतार लेते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उसी प्रकार से विष्णु ब्रह्मेन्द्र देवई रजत गिरि तटात प्रार्थितो यो वतिरिय शाक्या द्विद्दामकंठी रवनकर करा घात संजात मूर्छाम। ऐसे एक शेर केसरी के रूप में प्रकट हुए भगवान विष्णु ब्रह्मा इंद्र देवई बाकी सभी देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने वचन दिया कि मैं जरूर अवतार लूंगा, और जिसके लिए शिव गुरु माता पूर्णा जी दोनों तप करते हैं और उनके वहां भगवान पुत्र के रूप में आते हैं। बहुत अल्प आयु है, 8 वर्ष की उम्र में ही जो है बहुत सारे काम कर चुके थे। अब अल्पायु होने के कारण भगवान ने सोचा कोई भी मां अपने संतान को संन्यास लेने के लिए नहीं कह सकती, इतने तपस्या से तो पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान की ऐसी माया, एक हाथी गजेंद्र को पकड़ा था मगरमच्छ ने, ग्राह और गजेंद्र का जो युद्ध हुआ है भागवत आदि में उपाख्यान मिलता है, तो वहां पर भगवान को स्वयं आना पड़ता है, चक्र के द्वारा दोनों का उद्धार करते हैं। यहां पर भी आचार्य ने सोचा मां तो ऐसे कहेगी नहीं संन्यास लेने के लिए, जब मां के साथ मैं नहाने के लिए आऊंगा तो तुम जो है मगरमच्छ बन करके मुझे पकड़ लेना, और उस समय मां को मैं कहूंगा कि यदि तू संन्यास लेने के लिए कहेगी तो ये मगरमच्छ छोड़ देगा, नहीं तो अब समझ लो यही है मेरा अंतिम दर्शन। मां ने सोचा है कि अभी चला जाएगा तो आगे तो देखने को भी नहीं मिलेगा, कम से कम संन्यास ले लेगा तो देखूंगी तो सही। कहा ठीक है बेटा ले लो संन्यास। इस तरह से आचार्य जी की आयु बढ़ती गई है, 32 साल की उम्र में ही पूरे दिग्विजय किया। जहां जहां सनातन धर्म के विरुद्ध बातें हो रही थी, द्वैत का इतना प्रचार हो चुका था, बड़े बड़े पंडित ज्ञानी तो मानते थे अपने को, लेकिन अशांति थी लोगों में, लड़ाई झगड़ा। आचार्य ने उस सब को दूर करने के लिए अद्वैत मत का प्रचार किया, क्योंकि अद्वैत एक ऐसा है अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद दर्शन हो जाए, सब में परमात्मा का दर्शन हो जाए तो ये झगड़ा लड़ाई का टंटा ही कट जाए। आज जितने भी है हम बोलते हैं कि ये है इसलिए समस्या है, ऐसा कुछ नहीं है। आज पड़ोसी मुल्क से हम परेशान हैं, हम सोचते हैं कि इनको नेस्तनाबूद कर देंगे तो शांति हो जाएगी, वो चले जाएंगे तो फिर आपके अपने घर में ही समस्या पैदा होगी, प्रांत को लेकर के, जाति को लेकर के, स्त्री पुरुष को लेकर के, ये समस्या कभी समाप्त होने वाली नहीं है। यदि इसका समाधान आप खोजना चाहते हैं एक ही तरीका है, ज्ञान प्राप्त करो, सबके अंदर एक ही परमात्मा है, ऐसे विश्व बंधुत्व की भावना हो, फिर ये सारा जो है टंटा मिट सकता है। ऐसा मत का प्रचार किया आचार्य ने, और उनके बहुत सारे अनुयायी बन गए, शिष्य लोग बन गए। आचार्य जब अंतिम में प्रयाण करने जाते हैं तो उसके बाद भी ये प्रचार होता रहे, लोगों को ज्ञान मिले, इसके लिए खास करके अपने पट्ट शिष्यों को भारत के 4 दिशाओं में 4 मठ बना करके और उन सबको दायित्व सौंपा। 4 मठों में देखा जाए आज भी भारत के 4 धाम की यात्रा होती है, और उसी हिसाब से आचार्य ने 4 महावाक्य स्थापित किए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। पूर्व में जो है प्रज्ञानम ब्रह्म ऋग्वेद जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ भगवान भगवान विष्णु के अवतार हैं, ऐसे तो भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करने वाले, पहले भी आप लोगों ने सुना। चार जगह में भगवान रह करके अलग अलग काम करते हैं, ये भी आप सुनोगे। तो पहले जो ऋग्वेद का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, इसकी स्थापना जगन्नाथपुरी में हुई। यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद है ऐसा भेद, लेकिन महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, इसकी स्थापना आचार्य ने दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, जिधर के देवता प्रसिद्ध है रामेश्वरम, श्रृंगगिरी पर्वत है इसलिए श्रृंगेरी मठ नाम है, नाम है श्रृंगगिरी, ये कर्नाटक में है और स्थान हो गया देवता का, भगवान का रामेश्वरम, तमिलनाडु में है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का आचार्य ने जो है उसका महावाक्य तत्त्वमसी, और इसकी स्थापना की द्वारका में, द्वारकाधीश। चौथा महावाक्य अथर्ववेद, अयम आत्मा ब्रह्म, उत्तर में बद्रीनाथ। ये आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में बैठा कर रखना। फिर चार महावाक्यों के आधार पर जो ये चार धाम है, पहले वेद है, बाद में भगवान भी स्थापित होते हैं, मूल तो वैदिक धर्म है। भगवान रामेश्वरम में जो है स्नान करते हैं, 22 कुंड है, सभी कुंडों का नल कुंड, नील कुंड, अलग अलग कुंडों का नाम रखा है। कितनी गर्मी होती फिर भी सवेरे जब नहाने जाओ महाराज, ठिठुर जाते हैं, हालत खराब हो जाती है। आप लोग नहाए कि नहीं? नहाए है ना, बहुत अच्छा किया। तो ये भगवान वहां स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद फिर भोजन करना पड़ता है, दक्षिण से चले आते हैं। पूरब में जगन्नाथपुरी में 7 हंडियां चढ़ी रहती है चूल्हे पे, और जिसमें सबसे ऊपर वाला जो है अनाज अन्न पहले पकता है, नीचे वाला सबसे लास्ट में। क्या देखो, यही चमत्कार है। अपने घर में कभी ऐसे 7 हंडी चढ़ा के पकाना, देखना ऊपर वाले पहले पकती है कि नीचे वाली, नीचे वाले जल के राख हो जाएगा ऊपर वाले पकाने के चक्कर में, लेकिन वहां उल्टा है, ऊपर से पकते हुए नीचे पकता है, बताओ। ऐसे भगवान जगन्नाथ पुरी में जो है भोजन करते हैं, वहां भोजन की प्रधानता है। स्नान किया रामेश्वरम में, भोजन किया जगन्नाथ में, द्वारका में आके द्वारकाधीश शासन करते हैं। शासन करके जब थक जाते हैं, बहुत कर लिया दुनिया का काम, अब थोड़े अपने लिए तप करें, तब चले जाते हैं बद्रीनाथ। ये भगवान अपनी लीला के माध्यम से भी उपदेश दे रहे हैं, और साथ में चार महावाक्य जो वेद के हैं, उपनिषद वेद के अंदर ही है, तो इसलिए मांडुक्य उपनिषद में अयम आत्मा ब्रह्म है, बृहदारण्यक में अहम ब्रह्मास्मि है, छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि है, ऐतरेय उपनिषद में प्रज्ञानम ब्रह्म, ऋग्वेद के आधार पर, और ये सब आप लोग सुने हुए हो। धीरे धीरे शंकराचार्य जी की परंपरा चली कई वर्षों तक। विजयनगर में जिस राजा के मंत्री बने हुए थे सायण माधव, सायणाचार्य हो गए वेद के भाष्यकर्ता, माधव जिनका नाम पड़ा बाद में स्वामी विद्यारण्य जी। विद्यारण्य जी राजा के मंत्री बनकर के बहुत समय व्यतीत करते हैं, बाद में उनको अपने ऊपर वैराग्य होता है कि एक सरस्वती के पुत्र होकर, इतना बड़ा विद्वान होकर, एक राजा के मंत्री बनकर के अपनी विद्या का हमने दुरुपयोग किया है, इसका प्रायश्चित है संन्यास लेकर केवल भगवान का चिंतन भजन करना। और उसके बाद भी उन्होंने कितने सारे ग्रंथों की रचना की, जिसमें आज आप सब यहां पंचदशी का स्वाध्याय कर रहे हो, ये भी विद्यारण्य जी की ही देन है। बाद में वो भी शंकराचार्य बने, तो विद्यारण्य स्वामी जी के समय में बोलते हैं कुछ ऐसे विधर्मी पुनः पनपने लगे कि अद्वैत मत वाले को सताने लगे, परेशानी बढ़ने लगी, कहीं कथा प्रवचन हो रोको, ये बंद करो। जैसे अभी हम लोग ये कर रहे हैं ना, अभी तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आज जो राजनीति का वातावरण बना हुआ है, भगवान न करे वो दिन देखना पड़े। आने वाले दिनों में भले ही अच्छे दिन आने वाले हैं, वो किसके अच्छे दिन आएंगे, किसके बुरे दिन आएंगे, वो तो समय बताएगा। और कहेंगे महाराज ये कथा प्रवचन बंद करो, पंडाल कोई नहीं लगाएगा, लाउड स्पीकर मत बजाओ, डिस्टर्ब होता है, मंदिर में घंटी बजाना बंद करो। ऐसा वातावरण हो सकता है जैसे आज की राजनीति है ना, इसका परिणाम ये निकलेगा आगे। अभी हम सोचते हैं अपना कल्याण करो, आगे किसने देखा है भाड़ में जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए माहौल बनाया, उसका लाभ हमें मिल रहा है। यदि इस माहौल को हम नहीं बनाए रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी को कैसे लाभ मिलेगा? ऐसे स्वार्थ बुद्धि तो नहीं होनी चाहिए। पूर्वजों ने पेड़ लगाया, फल हम खा रहे हैं, आज हम भी पेड़ लगाएंगे तो आगे आने वाले खाएंगे। इस भावना से रहेंगे तब तो कुछ करने की इच्छा होती है। नहीं तो कई बार तो लोग बोलते हैं इस अद्वैत ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ने कई लोगों को आलसी बना दिया, बेकार कर दिया। केवल ज्ञान प्राप्त करो, अपना कल्याण करो और जाए भाड़ में, इसके जिम्मेवार हम लोग होंगे। आत्मकल्याण के साथ साथ लोगों का कल्याण हो ये भावना रखो, ये भी इसी के अंतर्गत है। नहीं तो कहीं न कहीं हमारे चित्त में अशुद्धि है, अपना स्वार्थ देख रहे हैं। आज हमारे पूर्वज आचार्यों ने जिस ग्रंथ के आज ये परंपरा बनी हुई है स्वाध्याय प्रवचन की, यदि ये नहीं होता तो हम लोगों को कहां से मिलता? आज हम इसको छोड़ दें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। नई चीज अच्छे काम शुरू करने में बहुत बिघ्न आते हैं, बिगड़ने में एक सेकंड लगता है। आप दो दिन ना आओ कथा में, तीसरा दिन, चौथा दिन, महीना निकल जाएगा। धीरे धीरे तो बोलोगे कभी हम जाते थे सत्संग करने। शुरू करने में लगता है नहीं आज भी जाना है, कल भी जाना है, आलस से आएगा, फिर भी करना है। जब तक अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति ना हो तब तक हम इसमें प्रवृत्त नहीं हो पाते। तो ये जो है अपना कल्याण करो, अपने सुख सुविधा देखो, आगे किसने देखा है। यह जब इतिहास बनेगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमें गाली देगी, कहेंगे इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। हम उनके जीवन के लिए तो सोचते हैं कि इसके लिए घर हो जाए, मकान हो जाए, लेकिन आदि भौतिक संपत्ति के साथ आध्यात्मिक संपत्ति का संरक्षण करना हम सबका दायित्व है। आप ऐसे संस्कार दें अपने बच्चों को, जब भी याद करें बोले मेरे माताजी ने ये संस्कार दिया, पिताजी ने ये दिया, कृतज्ञता ज्ञापन करें, जैसे हम लोग अपने आचार्य के प्रति कृतज्ञ हैं। ये बहुत जरूरी हो गया है। तो ऐसे ही विद्यारण्य स्वामी जी के समय में वातावरण बन चुका था, स्वाध्याय प्रवचन आदि बंद करो, ये सब करो। जब बहुत परेशानी बढ़ने लगी तब उन्होंने एक फौज तैयार किया जिसका नाम पड़ा नागा, नागा लोगों को तैयार किया। बोले ये हमारी सुरक्षा में रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। आप कितने भी अहिंसक बन जाओ, शांति के पुजारी बन जाओ, कुछ भी हो, दरवाजा भी बनाना ही पड़ेगा, कुंडी भी लगानी ही पड़ेगी, गेट भी बनाना ही पड़ेगा। ये कहो कि कुछ नहीं होता है, सब परमात्मा के रूप है, तो परमात्मा ही तो दरवाजा बनाते हुए बंद भी तो करते हैं। एक परमात्मा बोलते दरवाजा खुला रखो, एक बोलते हैं बंद करो। ऐसा अधूरा ज्ञान किस काम का? गुरुजी ने कहा सभी जीव में परमात्मा का दर्शन करो, चेले ने मान लिया कि सभी में परमात्मा का दर्शन करना है। और एक दिन नगर में जा रहा था, सामने से हाथी आ रहा है, महावत बैठा हुआ हाथी के ऊपर कह रहा है हट जाओ हट जाओ। चेला बोलता है गुरुजी ने कहा सब में परमात्मा है, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। परमात्मा के दर्शन करने के लिए जब हाथी आया पास में, सूंड में उसको उठा के पटक दिया सूंड से। अब बड़े गुस्से में आया कि ये क्या हुआ, सीधे गया गुरुजी के पास का, आपने कहा था सब में परमात्मा का दर्शन करो और हाथी ने मुझे पटक दिया, ऐसा क्यों? गुरुजी ने कहा हाथी के ऊपर महावत नहीं बैठा था? बोले हाँ। वो कुछ नहीं बोल रहा था? बोले हाँ। क्या बोला? बोले हट जाओ। तो फिर क्यों नहीं हटे?